اصل میں میرا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی کسی محفل میں مجھے دعوت دی جاتی ہے کہ میں کچھ بولوں تو مجھ سے پہلے جو عالم ہیں اس فیلڈ میں وہ اپنی بات کر چکے ہوتے ہیں تو میرے پاس کہنے کو کچھ رہ نہیں جاتا. اور میں چونکہ عالم نہیں ہوں تو میں عام سی باتیں کروں گا, وہ بات جو کہ مجھے اچھی لگتی. اور دیکھیں ہر آدمی کا اپنا پرسپیکٹیو ہوتا ہے کسی بھی بات کا, کسی بھی واقعے کا. کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو اس سے مختلف لوگ مختلف طریقے سے اس سے اثر لیتے ہیں. میرا جو اس میں یہ ہے کہ جو کربلا کا واقعہ ہے مجھے یہ سکھاتا ہے کہ سچ کے لیے کھڑا ہونا ہے, حق کے لیے کھڑا ہونا ہے, چاہے اس کی قیمت کوئی بھی ہو. اور یہ جو ہے یہ سب سے بڑا میسج ہے میرے لیے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ حق کی بات کریں گے تو اس میں خطرات ہیں تو جب بھی آپ حق کی بات کریں گے تو خطرات تو ہوں گے, لیکن اگر آپ نے مسلم امہ کو عمومی طور پہ اور مملکت خدا داد پاکستان کو خصوصی طور پر اگر آگے لے کے جانا ہے تو قربانیاں تو دینی ہوں گی. ٹھیک, اور جب تک آپ قربانیوں کا جذبہ نہیں رکھیں گے آپ آگے نہیں جا سکتے. ابھی میرے آفس میں گفتگو ہو رہی تھی تو جو کچھ کہا گیا اس کو میں کچھ دوسری طریقے سے پیش کرتا ہوں کہ جو انڈین سب کانٹیننٹ ہے اس کا ایک اپنا کلچر ہے, ہمیشہ سے بڑا وسیع نظر رہا ہے. تمام دنیا جہاں سے لوگ آئے فتح کرنے کے لیے یہاں بس گئے اور وہ یہیں کے کلچر میں رس بس گئے. کیوں رس بس گئے؟ کہ اس لیے کہ بڑا وائبرنٹ کلچر تھا. یہاں کے لوگوں نے کبھی کسی پہ حملہ نہیں کیا, کبھی کسی پہ اٹیک کرنے نہیں گئے. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو ایک دوسرے سے محبت کرنا اور برداشت کی جو کلچر تھا یہ ہزاروں سال سے اس علاقے میں موجود تھا. ہم ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے, ایک دوسرے کو برداشت کرتے تھے اور ایک دوسرے کو ساتھ لے کر آگے چلتے تھے. ابھی ذکر ہوا کہ شہر جو ہے وہ اپنا کلچر لے کے جامعہ میں آ رہا ہے, ہوگا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جامعات جو ہیں وہ لیڈرشپ دیتی ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ لیڈرشپ تو اس وقت نکلے گی نا جب معاشرہ جو ہے وہ لیڈرشپ کی ڈیمانڈ کر رہا ہوگا. معاشرہ کب کرے گا لیڈرشپ کی ڈیمانڈ؟ جب کہ معاشرہ سوچ رہا ہوگا, جب معاشرہ غور و فکر کر رہا ہوگا اور جب معاشرہ مباحثے کر رہا ہوگا. میں نے بارہ کہا اپنی باتوں میں کہ کسی سے اختلاف رائے رکھنا کسی بھی زندہ معاشرے کی نشاندہی کرتا ہے. اگر اختلاف رائے نہیں ہے تو ہم میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ ٹھیک ہے. اور میں تو پھر بارہ اسی ریفر کروں گا. ایک انگریز لکھتا ہے اپنے اسیسمنٹ میں, میں پہلے بھی بہت دفعہ کہہ چکا کہ استنبول کی مسجد کا واقعہ سناتا ہے کہ دن کا وقت ہے, لوگ جمعیں, ہر مکتب فکر کے لوگ ہیں اور اسلامی کسی بات پہ مباحثہ ہو رہا ہے, کوئی کسی کی بات سے متفق نہیں ہے, ہر ایک اپنی اپنی بات کر رہا ہے اور سارے اس کی بات بڑے غور و فکر سے سن رہے ہیں اور یہ سلسلہ گھنٹوں جاری رہتا ہے. اور وہ کہتا ہے अंग्रेज अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि फिर अजान होती है और वक्त जमात का वक्त आता है तो उनमें जो सबसे ज़्यादा मोतबर समझा जाता है उम्र के हिसाब से, इल्म के हिसाब से, फजीलत के हिसाब से, किसी फ़िरके के हिसाब से नहीं, उससे कहा जाता है जी आप आइए और इमामत फरमाइए और बाकी सब उसके साथ उसके पीछे नमाज अदा करते हैं। यह है वो वसअत कल्बी इस्लाम की, ये थी वो ताकत। वो अपने उसमें लिखता है किताब में कि जब तक मुसलमान जो हैं वो खुलकर बात करेंगे, अपने इख्तलाफात एक दूसरे के सामने रखेंगे और एक दूसरे के साथ खुल के बातें करेंगे, उस वक्त तक इनमें इतनी ताकत होगी कि इनको कोई नहीं हरा सकता। तो इसका मतलब ये हो गया कि मुसलमानों की जो ताकत थी, मैं रेफ़र कर रहा हूँ सल्तनत उस्मानिया की, जो कि हमारे दुश्मनों के दिल में जो है सबसे बड़ा खौफ था मुसलमानों का, उन्होंने ये प्लान बनाया कि मुसलमानों सल्तनत उस्मानिया इस तरह तोड़ो कि सदियां गुजरने के बाद भी ये दोबारा एक साथ ना हो सकें और मिल ना बैठें और एक कोई बड़ी ताकत ना बनाएं। वो क्या एक बात थी, बहुत सारी बातें हैं, अगर आप मैं मुझे सब तफसीलन याद भी नहीं है, मगर बहुत सारी बातें थी। सबसे जो बुनियादी बात ये थी कि वो माहौल ख़त्म कर दो जिस माहौल से ये आपस में मिल बैठते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं, बातें करते हैं और बात आगे लेके जाते हैं। ये वो ताकत थी। जब ये कहा गया कि जब आप इसको ख़त्म कर दोगे तो मुसलमान अपनी ताकत ख़त्म कर देंगे, ख्वातीन आज़ाद वो बात अभी ख़त्म नहीं हुई, ठीक। आजकल अगर आप साइंस और कल्चर में और साइंस में तरक्की करें, इल्म हासिल करें, तो क्या होगा? जब आप इल्म हासिल करेंगे तो फिर आप साइंस करेंगे, जब आप साइंस करेंगे तो फिर आप टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, जब टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे तो फिर जो है वो उससे इंडस्ट्रीज लगेंगी तो दौलत आएगी तो आप मुल्क जो है ना वो तरक्की करेगा, गुर्बत ख़त्म होगी, आगे जाएंगे, ये तो अच्छी बात है, इसमें किसी को क्या तकलीफ़ है? हाँ तकलीफ़ है, तकलीफ़ ये है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये मशीन ख़ुद बनाने लगे तो इसको अब बनाने वाला क्या करेगा, राइट? अगर आपने अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली तो फिर उनकी मार्केट तो ख़त्म हो जाएगी, न सिर्फ उनकी मार्केट ख़त्म होगी बल्कि आप उनकी मार्केट भी ऑक्यूपाई करेंगे। मैंने पहले ही बहुत दफ़ा कहा कि मुसलमान इन जनरल और पाकिस्तानी इन पर्टिकुलर, अल्लाह ने इनको बड़ी सलाहियतें दी हैं, मौके की बात है, फैसला करने की बात है, फैसला ये करने की बात है कि हम इस मुल्क में ऐसा माशरा कायम करेंगे जो कि इल्म की बुनियाद पर हो, जहाँ इल्म को प्रमोट किया जाता हो, जहाँ इल्म को आगे बढ़ाया जाता हो। जब भी हम ये माशरा कायम करेंगे हम आगे बढ़ेंगे। तो हुआ ये सम 35 ईयर्स अगो कि एक सोची समझी साजिश के तहत डिस्कस और डिबेट ख़त्म हो गई। मैं गवाह हूँ, जब मैं स्टूडेंट था तो डिस्कस और डिबेट होती थी, हर वक्त महफिलें होती थी, मुख्तलिफ तरह के लोगों को बिठा के बातें होती थी, घंटों डिस्कशंस होता था और समटाइम हम इमोशनल होकर एक दूसरे को बुरा भला भी कहते थे। जब डिस्कशन ख़त्म होती थी तो साथ खाना खाने जाते थे, साथ चाय पीते थे बैठकर। ये माहौल इसी जामिया का था, कहीं बाहर का नहीं था। फिर इसको नज़र वज़र नहीं लगी, साजिश हुई इसके ख़िलाफ़। किसने साजिश की, मैं सियासी बातें नहीं करना चाहता, साजिश हुई, साजिश का नतीजा क्या हुआ, बंदूकें आईं, फसाद हुए और हमने एक दूसरे की बात सुनना छोड़ दी। और अब बजाय बात सुनने के, जब आर्गुमेंट ख़त्म हो जाए ना, जब ख्वाजा जब इल्म ख़त्म हो जाए तो हाथों में वेपन आ जाते हैं। वेपन तो इस बात की निशानदेही है कि आपका इल्म ख़त्म हो गया, अब आपने तमाम मसले जो है ना वो लड़ाई से तय करने हैं। और जब आप लड़ाई से तय करोगे तो फिर सारी बातें होंगी। बर्दाश्त किसे कहते हैं? जब आप अपने दूसरे भाई की बात सुनने पे तैयार होगे और वो आपकी बात सुनने को तैयार होगा, इसी को तो बर्दाश्त कहते हैं। और जब आप बर्दाश्त ही ख़त्म कर दोगे तो फिर बात तो आगे नहीं बढ़ती ना कहीं से भी, आप वहीं पे बैठ जाओगे और आप कहोगे जी जो हम कह रहे हैं वो सच है और बाकी कोई सच नहीं है। तो आपने क्या किया कि आपने माशरे पर एक कैप लगा दिया, इंसान के जहन की वसत पे पाबंदी लगा दी। आज का मामला, मैं ये बात बहुत सारे फोरम पर कर चुका हूँ, एक ऐसे फोरम पर भी किया जो पूरी दुनिया में सुना जा रहा था, और मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि हमें इस माशरे में बर्दाश्त का कल्चर वापस लाने के लिए एक ऐसा माहौल पैदा करना पड़ेगा जहाँ कोई भी फ़र्द बग़ैर किसी डर और खौफ के अपने दिल की बात कर सके और दूसरे की बात सुन सके। ये माशरा पैदा करना हम सब की ज़िम्मेदारी है। पहले ये काम घर से शुरू करना पड़ेगा। जब हम अपनी रिस्पेक्ट करेंगे तो दूसरा हमारी रिस्पेक्ट करेगा। हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। जब हम डिस्कस और डिबेट का माहौल पैदा करेंगे, कहा गया कि यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो दहशतगर्दी को प्रमोट कर रही हैं, मैं एग्री नहीं करता। यूनिवर्सिटियों का ये काम ही नहीं है। दुनिया में यूनिवर्सिटियाँ सिर्फ जो होती हैं वो टॉलरेंस बढ़ाती हैं, इनटॉलरेंस कैसे बढ़ाएंगी? और जहाँ डिस्कस और डिबेट का माहौल हो वहाँ पर इस तरह की बात तो होती नहीं है। सोसाइटी ने ये बर्दाश्त ख़त्म कर दी है और वो सोसाइटी, वो आदम बर्दाश्त हम पे मुसल्लत कर रही है जिसके थोड़े थोड़े साइन नज़र आते हैं। लोग कहते हैं कि यूनिवर्सिटियाँ लीड करती हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, नहीं, सोसाइटियाँ लीड करती हैं, यूनिवर्सिटियाँ उसको रिएक्ट करती हैं। हमें सोसाइटी को बदलना होगा ख्वातीन हज़रात, हमें अपने दिल में वसत पैदा करनी पड़ेगी, हमें एक दूसरे की बात समझनी पड़ेगी, हमें वो माहौल पैदा करना पड़ेगा जिसमें कि हम एक दूसरे की बातें समझें। अगर मैं आपकी बात सुनूं और आप मेरी बात सुनें, जब हम उठें, ज़रूरी नहीं है कि हम एक दूसरे से एग्री करें, मगर हम दोनों ज़्यादा इल्म लेके जाएंगे घर, और वो इल्म जो है वो ये इल्म का इजाफा जो है हमें आगे लेके जाएगा और तरक्की करेगा। मुझे यकीन है, मैंने अभी अल्लामा साहब से कहा कि मेरा और जो हमारे उलमा हैं उनका रोल यही है कि हम अपने किरदार से और अपने गुफ्तार से बर्दाश्त की आदत डालें, खुद बर्दाश्त करें और ख़ुद मॉडल बने। जब आप खुद मॉडल बनोगे तो बात आगे चलेगी, और जब आप बर्दाश्त और जब ये बर्दाश्त बढ़ेगी तो बिल्कुल बात आगे बढ़ेगी। मैंने पूछा, कतर में मैं एक इंटरनेशनल अफेयर्स डिपार्टमेंट में मेरा प्लेसमेंट कर दिया गया था, तो वहाँ सारे सियासी लोग थे और वो जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस के माहिर थे। मैंने पूछा, भाई ये पाकिस्तानी क्यों, ये क्या वजह है कि हर साजिश पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होती है, औरों के ख़िलाफ़ भी होती है, मगर हम तो टारगेट हैं, हमेशा से रहे और अभी भी बढ़ता चले जा रहे हैं। तो पहले तो लोग बोलते नहीं थे, बड़ी मुश्किल से बोले, कहते तुम्हें समझ में नहीं आता। मैंने कहा क्या समझ में नहीं आता? कहने लगे कि ये असेसमेंट है उन लोगों का जिन्होंने इस दुनिया पे कब्ज़ा किया हुआ है, उनका असेसमेंट ये है कि अगर पाकिस्तान को 25 से 30 साल आज़ाद छोड़ दिया जाए, मेरी बात गौर से सुनिए, अगर पाकिस्तान को 25 से 30 साल आज़ाद छोड़ दिया जाए, कोई पैसा ना दिया जाए, सिर्फ तिजारत की जाए, ताल्लुकात रखे जाएं और आज़ाद छोड़ दिया जाए, तो 25 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों में और पाकिस्तान में इतनी दौलत है और इतना पोटेंशियल है कि पाकिस्तान जो है वो एक बड़ी ताकत बन सकता है। और ये भी कहा गया कि लोकल जितनी भी इलाकाई ताकतें, उन सब के लिए पाकिस्तान सिक्योरिटी रिस्क बन सकता है। ख्वातीन हज़रात, आपकी यही खसूसियत है जो लोगों को बहुत डराती है और जिसकी वजह से आपके ख़िलाफ़ खसूसी तौर पर ज़्यादा साजिशें होती हैं। तो हमें उस अहमियत लेके आगे बढ़नी पड़ेगी, लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें इनके ख़िलाफ़ जंग करनी पड़ेगी, जिहाद करना पड़ेगा। जिहाद ये नहीं है कि बाहर जुलूस निकालें और नारे लगाएं बर्दाश्त करो, ना ना ना, हमें माफ़ कीजिएगा, हमारी कौम को ड्रामे करने का बड़ा शौक़ हो गया है। बातें करते हैं बड़ी बड़ी और अमाल नहीं करते। मैं तो अमाल की बात कर रहा हूँ, अपने अमल से अपनी बातों से बर्दाश्त को बढ़ाना पड़ेगा और आगे लेके जाना पड़ेगा। और ये हमारा फ़र्ज़ है कि हमारे मुल्क के एक बहुत बड़ी तादाद में लोग इंतहाई गुरबत में रहते हैं और वो उस गुरबत से कैसे निकलेंगे, उस वक्त तक नहीं निकल सकते जब तक कि मैं और आप अपना फ़र्ज़ सही से पूरा नहीं करेंगे। ये हम पे फ़र्ज़ है पूरा करना। इस बात में अपनी बात ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।